वाल्मीकि के संवाद में कुछ इनके लीला चरित्र का वर्णन हुआ है। वाल्मीकि जी आप लोग सुने हैं कि वो दस्यु थे, लूटमार करना ही उनका कार्य था। चमन ऋषि के लड़के थे, रत्नाकर उनका नाम था। लोगों को मारकर जीविका का निर्वाह करते थे, किंतु नारद जी की कृपा से उन्होंने ये सब काम छोड़ दिया और छोड़ करके वाल्मीकि बने। बहुत दिनों तक तपस्या की, हजारों वर्ष दीमक खा गया उनके शरीर को। अंत में ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडलू से जल प्रोक्षण किया तो उनका शरीर नया हो उठा और उन्होंने उनको कुछ वरदान दिए। तत्पश्चात ये वाल्मीकि एक दिन स्नान करने जा रहे थे अपने शिष्य भारद्वाज के साथ में प्रयाग में। नदी में उतर करके जब स्नान करने जाएंगे, कपड़े रख दिए, उसी समय एक बहेलिया आया और जोड़े क्रौंच पक्षी को में से उसके पुरुष क्रौंच को उसने तीर मारा। वह तीर उसके शरीर में इस पार से उस पार हो गया और छटपट करता हुआ गिर पड़ा। क्रौंची बहुत करुण स्वर से रोने लगी, वो छटपटाता हुआ मर गया। वाल्मीकि ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अभिसंपात दिया, रे निषाद तू यहां पर मत रह, एक क्षण भी न मर, तुमको कभी भी शांति और सुख नहीं मिलेगा। और उन्होंने छंद में अनुष्टुप, चार चरणों में अनुष्टुप छंद का उनके अपने मुख से स्वतः निकला, मां निषाद समागमा शाश्वती क्षमा, तो इस तरह से निकला। उन्होंने कहा यह मेरे मुख से ऐसे ये श्लोकबद्ध कैसे आ गया, ये छंद कैसे आया, अनुष्टुप छंद। चिंता कर रहे थे, इतने में ब्रह्मा जी आए, बोले जी इसी छंदों में तुम राम की लीलाओं का वर्णन करो। उन्होंने कहा मैंने तो राम की लीलाओं को देखा नहीं। तब उन्होंने भी ऐसा ही उनको कहा, भक्ति जुगेन मनसी सम्यक पणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांच जद अपाश्यम, भक्ति जो का अवलंबन करो और हमारी कृपा से और भगवान की कृपा से तुम्हारे इस ध्यान योग में ही राम की सारी लीलाएं जैसे व्यास के हृदय में अंतर्भूत आविर्भूत हुई थी, ऐसी सारी लीलाएं उनके हृदय में आविर्भूत हुई। और उन्होंने राम की सारी लीलाओं को जन्म से लेकर के उसके पहले से लेकर के अंत तक सारी लीलाओं को उन्होंने प्रत्यक्षवत दर्शन किया और उसी का उन्होंने शब्दों में अक्षरों में लिपिबद्ध किया। यही रामायण वाल्मीकि रामायण विश्व का सबसे पहला काव्य हुआ। इसके पहले अभी तक अक्षरात्मक रूप में कोई काव्य नहीं था, वेद भी नहीं लिखे गए थे, वेद तो पीछे लिखे गए, इसलिए सबसे पहले उन्होंने किया। और सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्य लव और कुश को इसका अध्ययन कराया, इसका गायन भी किया जा सकता है। उन्होंने जो देखा समाधि में उसका इन्होंने वर्णन किया है वाल्मीकि रामायण के तीसरे सर्ग में, बाल्यकांड के तीसरे सर्ग में बतलाया है। वाल्मीकि रामायण ही मूल रामायण है, यही सब अपेक्षा मूल प्रमाणित है रामायण। जैसे वेदव्यास का श्रीमद् भागवत है और सब हैं, वैसे ये मूल रामायण है। ये प्रमाणों में भी अमल प्रमाण इसको माना गया है। पीछे से और भी बहुत से रामायण बने, किंतु और जितने भी रामायण बने हैं उनमें अपेक्षाकृत तुलसी रामायण श्रेष्ठ है और कुछ प्रमाणित भी है। क्यों प्रमाणित है कि वो श्रीमद् भागवत का अनुवाद है, राम का चरित्र है, किंतु जहां तक जितने भी सिद्धांत लिए गए हैं वो सब श्रीमद् भागवत के अनुवाद स्वरूप है, इसलिए ये प्रमाण स्वरूप। विशेष करके उत्तरकांड जितना है तत्व की बातें वो सब श्रीमद् भागवत के से लिए गए हैं। कहीं कहीं पर लोग उसको समझने में भूल करते हैं और कहते हैं कि यह मायावाद मिश्रित ग्रंथ है, कहते यह गलत बात। वैसे सिद्धांत श्रीमद् भागवत में है भी हैं, जैसे तुलसीकृत रामायण में मिलते हैं, जैसे सिया राम मैं सब जगह जाना, तो कृष्णमय भी जगत को महाप्रभु ने भी देखा और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। अभेद मुक्ति और भेद मुक्ति की बात, अभेद मुक्ति की बात दिखलाई है, श्रीमद् भागवत में भी उसका है। मुक्ति है किंतु भगवान के दिए जाने पर भी भक्त लोग उसे ग्रहण नहीं करते, और उसमें कुछ लोगों ने ग्रहण किया, राम ने उनको दिया भी। इस तरह से उनका जब हम विचार करते हैं सिद्धांत की दृष्टि से, तो उसमें भी मायावाद का कोई चिन्ह नहीं है, वो अपने समझने का फेर है। अब वाल्मीकि जी उसी का वर्णन कर रहे हैं जो समाधि में उन्होंने देखा, जिन लीलाओं का तृतीय सर्ग। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद्धर्म तद्धर्मार्थ सहितम हितम व्यक्तम अन्वेषते भूयो जद्वृत्तम तस्य धीमत। नारद जी के मुख से सुना सारी राम के लीलाओं को सुन करके, संपूर्ण रामचरित्र को जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था सुनकर वर्ज्य वाल्मीकि जी समाधि लगाई। भक्ति योग का अवलंबन, भक्ति योग का अवलंबन करना माने क्या, जो व्यास जी ने समाधि लगाई भक्ति योगेन मनसि सम्यक परिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण। भक्ति योगेन माने क्या, संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर गुरु के चरणों में अपने को बेच कर, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसी भावना करे और उन पर निर्भर होकर के उनका चिंतन करे तो वो लीला अपने आप आएगी। क्यों, स्वर्ण मुखे ही जीवादो स्वयं में उत्फूर्त। जब तक श्यमनमुखी हमारी चित्त वृत्ति नहीं होगी, जब तक उसमें किसी प्रकार के भी शंका होगी, जब भगवान का शरण लेने पर, अपने सदगुरु का शरण लेने पर, वो भी तो हमारे समान ही हैं, ऐसी थोड़ी सी भी शंका हुई तो क्या होगा, संदेहात्मा विनश्यति। विनश्यति माने क्या, मर जाएगा वो, उससे च्युत हो जाएगा भक्ति से। इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, भक्ति के विषय में, भगवान की कृपा के विषय में और सद्गुरु की कृपा के विषय में कभी भी संदेह मत होना। हम लोगों को कभी कभी ऐसा होता है, ये क्या कारण है, कभी कभी मन लगता है सेवा में, कभी मन नहीं लगता है, सबका कारण क्या है, संदेह है। गुरु तत्व में भी संदेह है और भगवत तत्व में भी संदेह है, तत्व के संबंध में भी संदेह है और भक्ति की भावना के प्रति, जो भक्ति सर्वस्व देह शक्ति है, इस पर भी संदेह। अपने बल पर कुछ होता है, जैसे अपने बल से मैं रुपया कमा रहा हूं ऐसा अभिमान होता है। अरे तुमको बुद्धि किसने दिया, अपना बल कह रहा है, तुम बिजनेस खूब अच्छी तरह से चला रहा है, ये बुद्धि किसने दी, शरीर को ठीक रखा किसने, और कुछ दिन के बाद में जब फेल हो जाएगा सब कुछ तब क्या होगा। इसलिए अपनी बुद्धि के प्रति भरोसा न रख करके, वो जो उपनिषद का वाक्य है न क्या है, जमे ये वे सब के मैं महात्मा प्रवचन लब्ध हो न मेधया न बहुना सूते न जम एव ये सब वेणुते। जब उनको हम वर्ण करेंगे ये प्रभु आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, और फिर जब उनकी कृपा होगी, अंतर्मुख होना हमारा कार्य है और कृपा करना और रियलाइज करना उनका ये कार्य है, इसलिए हम अंतर्मुख होंगे, अर्थात अंतर्मुख माने वो क्या धी है ना, धी धी रहा। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने श्रीमद भागवत के दो दो जगहों में तो वो धी माने क्या, गुरु के वचनों में, शास्त्र के वचनों में, भगवान के वचनों में संपूर्ण रूप से श्रद्धा जो है उसमें तनिक भी गलत नहीं है। भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में वो संपूर्ण शक्ति है जो शास्त्रों में भी नहीं लिखी गई, उससे भी अधिक होनी चाहिए। यदि ऐसा किसी को विश्वास हो जाएगा तो कभी वो विचलित हो सकेगा। देखिए नींद आ रही है ना, इतनी बीजवती वाणी बतलाया जा रहा है और नींद आ रही है दिल्ली के लोगों को और मथुरा के लोगों को। जरा सीधा खप बैठिए तो सीधे एकदम ऐसे तन करके बैठो। बिजनेस में पैसा कमाने के समय तो बड़ी उत्कंठा रहती है, पांच फोन एक साथ में लगते हैं, खड़े होकर के काम करते। ऐसी जब तक बुद्धि नहीं होगी भाई, भगवान के प्रति, भगवान नाम के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति ये श्रद्धा, जो लिखा है एकदम परम सत्य है। विकृतम ब्रजवधु इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो यस्। जो श्रद्धा पूर्वक, लौकिक की श्रद्धा नहीं भाई, कौन परमार्थ की श्रद्धा जिनके अंदर में है, कृष्ण भक्ति कहिए सर्व कर्म कृत है, ये हो श्रद्धा। ऐसा होने पर तो यदि भगवान का भजन साधन करेगा तो क्या होगा, पहले भगवत भक्ति आएगी और उसके बाद में उसके काम रोग इत्यादि सब दूर हो जाएंगे। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और पहले काम को दूर कर लूंगा, अनर्थ दूर करके तब फिर मैं भजन करूंगा, प्रेम पीछे आएगा। तो ये इसका मतलब हुआ ये शास्त्र पर विश्वास नहीं है, इसलिए भक्ति देवी की कृपा नहीं होगी। लाख जन्मों तक भक्ति से विचित हो जाएगा। कोई भी आज तक देखा है साधन में, अनर्थग्रस्त लोग ही तो साधन भजन करके भगवान को पाए हैं। पहले भक्ति आई, अनर्थ अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए सेवन मुख के ऐसी दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। तो जब उन्होंने भक्ति का अवलंबन किया था, अनकंडीशनल सरेंडर किया और आप ही हमारे एकमात्र हैं, भक्ति देवी का आह्वान किया, उसको अवलंबन किया निस्वार्थ रूप में, साथ साथ में भक्ति देवी आकर के राम की सारी लीलाओं को उनके सामने साक्षात्कार के रूप में प्रकट कर दिया। हम लोग अभी भी, अभी एक ऐसा होता है ना, हो नहार वीरमान के हो तचीकने पास, सब बातें तो हैं किंतु इस पर ध्यान नहीं देते। यदि प्रारंभ से ही ऐसी हो भक्ति, श्रद्धा हो, पुष्ट होगी, और उसके पत्ते कैसे होंगे, जैसे कि वो बतलाया है ना, पहले दो पत्ते होंगे, फिर दो पत्ते होंगे, फिर दो पत्ते होंगे। साधन अवस्था में क्लेश अग्नि और जरूर होगी, जिसको इसमें श्रद्धा नहीं है उनको नहीं होगी। एक मूर्ख आदमी भी जो पढ़ा लिखा नहीं है किंतु बुद्धिमान है उसको हो जाएगा, निरक्षर आदमी को। और बड़े बड़े पंडित लोग जब इस पर विश्वास नहीं होगा तो नहीं होगा। भगवान का नाम करने से, भक्ति करने से जरूर क्लेश तकनी होगी, जितने प्रकार के क्लेश हैं दूर हो जाएंगे और शुभदा होगी। भाव भक्ति जब आएगी तो मुख्य लोक आकृत और सुदुर्लभ, ये दोनों हो जाएगा। और जहां प्रेम होगा तो कृष्ण को आकर्षण करेंगे और कृष्ण का साक्षात्कार हो जाएगा भाई, ये जरूर विश्वास रखो। यदि प्रारंभ में ये विश्वास नहीं है नाम के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु सेवा के प्रति, तो उनका मन विचलित रहता है। दिन भर एक विधवा नारी जिसका पति मर गया है, ऐसे दिन रात कोई उत्साह ही नहीं है भक्ति में, तो क्या भजन होगा। प्राण भी लेकर के हथेली में बड़े आराम के साथ, आनंद के साथ उल्लसित होकर के सेवा इत्यादि में जुटेगा, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इन्होंने यही भक्ति योग का इस प्रकार से उन्होंने आवाहन किया, लगाया। कौन सी भक्ति, अन्नाभिलाषिता शून्यम, अन्नाभिलाष छोड़ दिया, ज्ञान कर्म आदि इसको भी दूर कर दिए और अनुकूल ने न राम अनुशीलनम जब उन्होंने करना आरंभ किया भक्ति का और साथ साथ में भक्ति देव उनके हृदय में आविर्भूत होकर के राम की सारी लीलाओं का यही क्रम है। ऐसा ही साधन होना चाहिए हमको बड़े उत्साह के साथ, जिसको भजन में उत्साह नहीं उत्साह निश्चयात कैसा विश्व ब्रह्मांड का प्रलय हो जाने के बाद भी हमारा नाम हमारी रक्षा करेगा। विश्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, सब कुछ हो गया, उलट जाएगा, किंतु शास्त्रों में जो नाम की महिमा लिखी, हमारे गुरु जी ने जो कहा ये परम सत्य है, इस तरह निश्चय कृष्ण अवश्य मिलेंगे इस भक्ति के द्वारा। जब गुरु जी ने बीज बोया है निष्फल होगा, गुरु जी का बोया है बीज क्या दिया, कृष्ण सेवा की वासना जो कि श्रद्धा के रूप में परिलक्षित होती है ऊपर से, तो गुरु जी का दिया हुआ यह नष्ट हो जाएगा। जरूर हमको क्रमशः धीरे 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 जरूर भक्ति होएगी, कृष्ण का जरूर ही दर्शन होगा, उनकी सेवा मिलेगी, ब्रज की भक्ति तक भी मिल सकती है। तो उत्साह निश्चय धैर्यार्थ तत्त्व कर्म प्रवर्तना, कुछ दिन नहीं हुआ या कोई किसी ने एक थप्पड़ दे दिया या किसी ने थोड़ा सा ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन मैंने किया, जैसे भगवान ने नर जी का ऑपरेशन कर दिया, महाप्रभु जी ने ऑपरेशन कर दिया किसको, छोटे हरिदास को और काला कृष्णदास को थोड़ा सा, या किसी को और थोड़ा सा ऑपरेशन हो गया, बस बिथक गए। बिथकना जानते हैं, विशेष रूप से थक गए, इसको कहते हैं बिथक जाना, तो बिथक गए। अब उनकी गाड़ी लाइन में आने पर ना जाने कितने वर्ष या हो सकता है कि जन्म भी लग जाए भाई, किंतु भक्ति का तरीक तो और कोई गति नहीं है भाई, इसको समझ लो। इसलिए महापुरुषों ने बचपन से ही भजन इस तरीके से किया, तो वैसे हम लोगों को उत्साह के साथ में, निश्चय के साथ में, धैर्य के साथ में, तत्त्व कर्म प्रवर्तना, उसमें कभी भी तनिक भी कोई शिथिलता नहीं आए तब तो ये भक्ति होगी। तो उसके कृपा से जहीं अंतर्मुख हुए और भक्ति पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, भक्ति देवी संपूर्ण रूप से आकर के राम की लीलाओं का दर्शन कराया। उन्होंने क्या देखा, वे कुश के आसन पर बैठे हैं। विशेष करके हम समझते हैं गिरिराज गोवर्धन में हम जाएंगे, परिक्रमा करेंगे हरिकथा छोड़ करके, जमुना में जाएंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे, कुंभ मेले में स्नान कर लेंगे, तो हम ये भक्ति आ जाएगी। लाख कोटि जन्म में नहीं होगा ये समझ रखो, लाख करोड़ जन्म में। इसलिए भगवत भजन ये जो तरीके हैं, महाप्रभु जी के नियम है, विचार है, ऐसे चलो और तब तो भक्ति होगी। यदि उपेक्षा किया तो भक्ति देवी अपनी उपेक्षा नहीं सहन करेंगी, क्या करेंगी, और भक्ति को अपने स्थान में माया भक्ति को बैठा करके और असल में वो चली जाएंगी सीता जी, रामचंद्र जी अग्नि में दे देंगे, अग्नि को सौंप देंगे उसकी भक्ति को, और उसके बदले में क्या दे देंगे, माया की भक्ति दे देंगे। वे गुरु के आदेश से कुश के ऊपर आसन के ऊपर में बैठे, मुख या पूर्व की तरफ में, और विधिवत आचमन किया। हम लोग आचमन भी नहीं करते हैं, वैसे ही गुरु जी ने कहा तो कुछ मंत्र तय कर दिया, मंत्र का अर्थ भी नहीं समझते, मंत्र का इष्ट देव भी नहीं समझते, मंत्र के प्रति शरणागति आत्मनिवेदन इत्यादि प्रपत्ति भी नहीं होती। ऐसे ही गुरु जी ने कहा है बलाय टालने के लिए और बातों की चिंता करते हुए बैठते, तो कहां से फल आए, आए कहां से फल, जब विधिवत करो, स्नान करके पूर्वाग्र में बैठो, कुश के आसन पर बैठे। हम लोगों के लिए बनते हैं उनके बड़े बड़े मोटे आसन, कुश के आसन में कुछ वैज्ञानिक चीजें हैं, काट के आसन पर बैठने का एक वैज्ञानिक कुछ पहलू है, तो ये सब कारणों से ये बतलाया। ऐसे ही नहीं हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, आसन पर बैठे विधिवत आचरण किया, आचमन करते हैं, कितने लोग आचमन करते हैं संध्या अन्य के पहले, हम समझते हैं कि विधिवत करने वाले बहुत ही कम होंगे। आचमन का उद्देश्य क्या है ये भी समझना चाहिए, आचमन से भूत शुद्धि होती है। कैसे हुई? विष्णु को मैं अपने को समर्पण करता हूँ, नमस्कार, ओम विष्णुवे नमः। माने क्या? हे व्यापक विष्णु, जो आप सर्वत्र व्यापक है, हमारे हृदय में सर्वत्र हैं, जो हमको देख रहे हैं, आज आपको देखते ही आपकी साक्षी दे करके मैं अपना नमस्कार, अर्थात अपने जितने भौतिक भी अभिमान है, स्थूल अभिमान है, देह में आत्मबुद्धि है, इन अभिमानों को छोड़ करके आपके शरणागत हो रहा हूं। ऐसा आचमन करो तो अपनी बुद्धि टुद्धि, ये माइक है और ये सब को छोड़ करके करो आचमन। देखो, जो पहले आचमन नहीं करेगा ना, तो क्या आएगी? संसार की के विषय इसमें आएगी। इसलिए विधवत आचमन माने वो है आंतरिक भाव। ये पानी लेकर के और सिर पर कर लिया विष्णु और उनका कोई चिंतन नहीं है, विषयों का ये सब नहीं छोड़ा, तो कैसे होगा? इसलिए उनके शरणागत पहले आचमन किया और स्थिर भाव से, सीधा भाव से, एकदम अन्य करने से मैं ऐसे बैठो, पैर पर इस पर ये लगा करके। अभी जितने आदमी बैठे हैं सब बैठे हैं ऐसे आराम के साथ में, स्थिर भाव से। स्थिर माने क्या? चित्त को स्थिर किया, शरीर तो स्थिर हुआ, अब चित्त को भी स्थिर करो। स्थिर माने क्या? चित्त जो डामाडाल हो रहा था विषयों में, इधर में इधर में, इस पत्ते से उस पत्ते पर, उसको स्थिर कर दो एक पत्ते पर। और एक पत्ता कौन? जो तुम्हारा इष्ट देव, जिस मंत्र को तुम करने जा रहे हो, उस पर एकदम स्थिर कर दो और चित्त कहीं नहीं जाए। आंख बंद करने पर या तो नींद आएगी, अन्यथा भीतर से स्फूर्ति आएगी। जो कुछ उन्नत कुछ हुए हैं उनको क्या होगी? वो एकदम सतेज रहेंगे और चेतनता रहेगी और उनकी स्फूर्ति होगी उस पर, चित्त को स्थिर करने पर, जिस विषय के लिए स्थिर कर रहे हो। और केवल शरीर ही रहा नहीं जाएगा, इसलिए स्थिर करो, मैंने बुद्धि को एकदम स्थिर करो, नहीं तो पेंडुलम जैसे डोलती रहेगी। एकदम स्थिर करके अपने इष्ट मंत्र में या इष्ट देह में लगाओ। और इसके बाद में समाधि, समधि हो गए, समधि, उनकी बुद्धि कहां ले गए? जड़ जगत से ऊपर उठा लिया, देहात्म बुद्धि छोड़ दिया। और भगवान जो संपूर्ण रूप से सच्चिदानंदमय तत्व हैं, उनके समान अपने बुद्धि को बनाया, अर्थात शुद्ध चिन्ह में बनाया, बनाया माने आविर्भूत हुई वो। और होने के बाद में रामचंद्र जी के लीलाओं के लिए प्रार्थना करने लगे। ये लीला जो है ना, ये भी सच्चिदानंदमय है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, उनके परिकर सब सच्चिदानंद तत्व हैं। इसलिए लीला को ये मात्र कहानी है ऐसा मत समझो। क्या समझो? अप्राकृत व्यक्ति है, असत भक्ति है वो। वो हृदय में वो लीलाएं अपने आप आएंगी। इनका भी ऐसा ही हुआ। देखा क्या? रामचंद्र जी का जन्म हुआ। जैसे कैसे जन्म हुआ ये बहुत, कौन ऋषि? श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और कैसे उनकी रानियों ने उसका यज्ञ का भाग खाया, और उसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे पैदा हुए, बचपन में कैसे हंसते थे ये, कुछ बोल सर ए बरसात। अच्छा, कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कितना बजा भी अभी कुछ नहीं, कैसे चलते थे, कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे? एक कौवे के देख करके मालपुआ रामचंद्र जी खा रहे हैं नंगे, और उसको दे रहे हैं, उसको ऐसे लुभा रहे हैं, और वो अपने दोनों पैरों पर एकदम टप टप करता हुआ उनके निकट आता है, और फिर किलकारी मार करके रो करके दौड़ते हैं मैया के पास में, घर के भीतर। और फिर जब वो इधर आ जाता फिर उसको दिखलाते हैं। अंत में वो काकभूषुंडी जी, उनके कौवा, वो कौन था, काकभूषुंडी, उनके मुख में पहुंच गया, और लाखों करोड़ों वर्ष तक अखिल विश्व ब्रह्मांड में घूमता हुआ, और फिर कहीं किसी जगह में ऐसे ही कर रहे थे, उसको जो ही रामचंद्र जी हंस दिए तो उनके मुख से बाहर आ गए, उनको आशीर्वाद दिया, अब से माया तुमको नहीं बैठेगी। हजारों मील तुमसे दूर रहेगी। ऐसी ऐसी सब लीलाएं। एक समय स्नान करने गए तो रावण वहां पर आया और उनके चरणों को पकड़ करके उनको डुबाना चाहा, और रामचंद्र जी ने क्या किया, एक उसमें तिनका बहता हुआ जा रहा था उसको उठाया और उसे बाण पर लगा करके ऐसे ही तिनके पर तिनका रख करके अब बाण चलाया और उसे मारा तो वो कहां जाकर के लंका में जाकर के गिरा। नहीं ये भी इसका भी ये बाल लीलाओं में यशोदा जी के गोदी में खेल रहे हैं, कैसी कैसी अपूर्व लीलाएं कर रहे हैं। क्या यशोदा कौशल्या जी उसमें महर्षि अपने योग धर्म से योग माने भक्ति योग के बल से भली भांति लीलाओं का साक्षात्कार किया। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ में पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए चले गए, क्रोध से गए होंगे। गुरु जी ने कहा जे देखो ये काम कराओ, नहीं क्या कहा जाए उस मठ में जाओ तो वो क्या करेंगे। अच्छा मठ में जाते हैं, अपनी लुकटी बुकटी सब कुछ गठरी ले ली और पैचार कर दिया। पैचार माने क्या, और जिस मठ में कहा गया उस मठ में नहीं गए, कहां गए, अपना एक बिजनेस केंद्र खोल दिया, फिर मठ में आए नहीं। कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या, वहीं पर शादी उदी भी कर ली और अंत में नरक में डूबे। तो ऐसा आदेश होना चाहिए, पिताजी ने आदेश दिया और वो हंसते हंसते गए। लक्ष्मण जी को कुछ क्रोध हुआ, इनको क्रोध नहीं हुआ, उनका भी क्रोध शांत किया। किस प्रकार से कैकई न चाहते हुए भी रामचंद्र जी के वरदान से, ये गुप्त बातें हैं, उन्होंने रामचंद्र जी ने उनसे वरदान मांगा था, मैया तुम्हें एक बात मांगता हूं, तू मुझे बड़ी प्यार करती है जरूर देगी, क्या जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम हमको वनवास के लिए हमको जरूर भेजना, देवताओं का कार्य करना है, विश्व का कल्याण करना है, नहीं तो हमारे भक्तों का उद्धार नहीं होगा, किसका, जय विजय का। इसके कारण से जगत की लांछना अपने सिर पर लेकर के भी और ऐसा काम किया, जैसे शंकर जी मायावाद का प्रचार किया वैसे उससे भी हलाहल भरा कार्य, इसलिए ये जगत वंदनीय है। इसके बाद में राम विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जी सिद्धाश्रम में गए। किस प्रकार से उन्होंने मारीचि को उड़ा दिया लंका में और उनके भाइयों का वध किया, ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया। इसके बाद में धनुष यज्ञ में जनक नंदिनी सीता जी का वर्णन किया। रामचंद्र जी का परशुराम का संवाद हुआ, जबकि ये धनुष यज्ञ हुआ और विवाह हो गया तो उसी समय में तुलसी की रामायण के अनुसार और वाल्मीकि रामायण के जब धनुष टूटा और सीता जी ने उनके गले में माला दी और उसी समय विवाह की अभी चल रही थी, अब विवाह होने जा रहा है, और उसी समय में परशुराम जी भयंकर रूप धारण करते हुए अपनी कुल्हाड़ी के साथ में फरसे के साथ में आए और उस समय में लक्ष्मण जी के साथ में संवाद हुआ। क्रोध एक शक्ति का प्रतीक है, इसलिए लक्ष्मण जी ने उनको क्रोधित किया और उनका क्रोध से उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। क्रोध से, क्रोध करने से शक्ति भाई क्षीण होगी, इसलिए क्रोध मत करो, साधन भजन में चौपट हो जाएगा, क्रोध से क्षीण हो जाएगी शक्ति। इसलिए राम लक्ष्मण जी उनको कुछ ऐसी बातें कर, मैं कुम्हड़े का बतिया नहीं हूं। कुम्हड़ बतिया मैंने क्या, ये काशी फल होता है उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, उसमें देखो ये बड़ा पुष्ट है तो बस साथ ही साथ में वो सड़ जाएगा, वो नहीं बढ़ेगा। तो मैं कुम्हड़ा बतिया नहीं हूं, जो तुम आपने ऐसे कर रहे हैं जो मैं तुम्हें मार डालूंगा तो मैं वैसे हो जाऊंगा, ऐसा हमको मत समझिए। मैं तो आपको जान रहा था जैसे आप तो साधु संत हैं, किंतु साधु संत का वेश दान के लिए ये कुल्हाड़ी क्यों रखा, उस पर और बिगड़ गए, जितने बिगड़ हैं और भी उनको। रामचंद्र जी बीच बीच में कुछ कहते हैं, कहिए ये साक्षात विषा और ये कैसा है, ऊपर से मधुर है और भीतर से विष भरा पड़ा है, ये दोनों एक ही समान है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने बचपन में कितनी धनुहिया तोड़ दी, धनुहिया मैंने छोटी धनुहिया तोड़ दी, तो क्रोध नहीं हुआ, और ये पुरानी धनुहिया मैंने तोड़ दी, ये हमारे भाई ने छुआ और टूट गई, तो उसमें दोष क्या है, ये धनुष का दोष आज सड़ा गला होगा इसलिए वो टूट गया। फिर रामचंद्र जी ने कहा, मैं आपका दास हूँ, हमको क्षमा कीजिए, ये लड़का अभी बच्चा, अभी दूध के दांत नहीं टूटे हैं। कहिए तुम ऐसा ऊपर से तुम क्षमा मांगता है, ये भीतर से ऐसा करता है। तो उन्होंने कहा जी अच्छा ये मैं धनुष देता हूँ, इसको चढ़ाओ तो जरा। बस देने के साथ ही साथ अपने आप चढ़ गया, उनका अभिमान दूर हो गया, उनके चरणों में गिर गए, और इस तरह से फिर वो अपने स्थान में लौट गए, शादी हुई। ये भी देखा, ये भी रामायण का एक